ओम नमस्ते जी। आज का विषय है तृतीय श्रव्य कणिका, संसार में सच्चे योगी के लक्षण। महानुभाव, विगत दो श्रव्य कणिकाओं में चार बिंदुओं पर हमने विस्तार से विचार किया कि जो व्यक्ति सुबह उठते ही आंख खोलते ही ईश्वर को पकड़ लेता है मानसिक धरातल पर और आंख मूंदने तक, नींद में जाने तक इसका सातत्य सतत बनाए रखता है, यह योगी का सबसे प्रथम और मूल लक्षण है कि दिन भर व्यक्ति ईश्वर एहसास में जीने का अभ्यासी बने। एक बात। दूसरी बात, पूरे के पूरे संसार को उसका निमित्त कारण ईश्वर को मानता है। अपने पास विद्यमान ज्ञान विज्ञान बल सामर्थ्य ऐश्वर्य ईश्वर प्रदत्त मानता है। शरीर मन बुद्धि आदि का ईश्वर को निर्माता मानता है, रक्षक पालक पोषक मानता है और इस एहसास में दिन भर जीने का अभ्यास करता है, वह व्यक्ति योगी है। तीसरी बात, हमने आपको बताने का प्रयास किया था कि वेद और वेदानुकूल सत्य शास्त्रों पर, आप्तों के वचनों पर, महापुरुषों के आचरण पर वो श्रद्धा रखता है, आस्था जगाता है और प्रगाढ़ श्रद्धा रखता है और ऐसी श्रद्धा उसकी मां के समान जो है पालना करती है और योगाभ्यास में उसकी गति कराती है, योगाभ्यास में चलने की तीव्र प्रवृत्ति उसकी होती है। चौथी बात हमने आपको बताई थी कि ईश्वर जीव और प्रकृति यानी त्रैतवाद के सिद्धांत को यथार्थतः वह समझता है कि किस तरह से यह संसार मेरे लिए साधन है, मैं साधक हूं और मेरा लक्ष्य यानी साध्य ब्रह्म है, वो इसका भान यथावत रखता है, तीनों के यथार्थ स्वरूप को समझने का प्रयास करता है। महानुभाव, आइए आगे के बिंदुओं पर भी आज की श्रव्य कणिका में विचार करते हैं। अगला पांचवा बिंदु है, संसार के विषय भोगों में चार प्रकार का दुख अनुभव करता है। महानुभाव, पृथक से कभी इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी तो केवल इतना समझेंगे कि यदि हमने संसार को साध्य बना करके भोगा तो ये चार प्रकार के दुख हमारे जीवन में आएंगे ही आएंगे। ऋषियों ने बताया, परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्वम विवेकिनः। वैसे तो इसके दो पहलू हैं, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक वाक्य है, संसार में सुख है, ईश्वर संसार में सुख उत्पन्न करता है और ईश्वर इस सुख रूप संसार को हमें प्रदान करता है, सांसारिक सुख ईश्वर हमें दे रहा है, यह भी एक वाक्य है। दूसरा वाक्य है ऋषियों का, संसार में दुख है, इसमें परिणाम दुख है, इसमें ताप दुख है, इसमें जो है संस्कार दुख है, गुणवृत्ति विरोध दुख है, भोगते 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 इंद्रियों की भोगने की क्षमता बढ़ती जाती है और कभी भोगों की इच्छा समाप्त नहीं होती, हम बूढ़े हो जाते हैं लेकिन इच्छाएं तृप्त नहीं होती, यह अनुभव है लोगों का। महानुभाव, परिणाम ताप दुख, ऐसे ही संस्कार दुख, संस्कार जो है आसक्ति के बन गए तो फिर आगे चल करके वो उसको दुख देंगे, ऐसे ही गुणवृत्ति विरोध दुख, सतोगुण रजोगुण तमोगुण अलग अलग प्रकार का जो है उनकी प्रवृत्ति है, उनके लक्षण है और उसकी अनुभूतियां हैं, जब ये परस्पर विरुद्ध है तो जब ये उभरेंगे दबेंगे चित्त की अलग अलग अवस्थाओं में व्यक्ति को दुखी करते रहते हैं। महानुभाव, परिणाम ताप संस्कार गुणवृत्ति विरोध दुख, शास्त्रीय चर्चा इसकी हम बाद में करेंगे। ऋषियों ने और भी जगह जगह कहा कि आए दुखम, अर्जन करना भी दुख है, रक्षण करना भी दुख है, वृद्धि करना भी दुख है, उसका भोग करना भी दुख है, कहीं वो हमसे छीना ना जाए, चोरी ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए या बिछो ना हो जाए, इन बातों को लेकर के व्यक्ति दुखी रहता है, कितना दुख है संसार में। महानुभाव, एक दार्शनिक व्यक्ति इन सारे के सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए संसार को साध्य बनाता है। यदि इस तरह से चिंतन करेगा, संसार बेशक सुखमय है पर कब, जब त्यक्तेन भुंजिता कंडीशन अप्लाइड थी उसको जब अनुपालन करता है। मां गृदह, लालच मत करो। एक होता है भूख के लिए खाना और एक होता है खाने के लिए अस्तित्व। मेरे लिए खाना है भाई, मैं खाने के लिए नहीं हूं, मैं खाने के लिए नहीं जी रहा हूं, खाना मेरे लिए है। जैसे कार के लिए पेट्रोल होती है तो जिस स्वरूप की कार होगी उसमें उस स्वरूप का ईंधन डालेंगे, सीएनजी वाली है तो उसमें गैस डालेंगे, यदि डीजल वाली है तो उसमें डीजल डालेंगे, पेट्रोल वाला है तो पेट्रोल डालेंगे। वाहन के लिए ईंधन चाहिए, ऐसे ही शरीर के लिए भोजन चाहिए। जब मैं भोजन के लिए होकर के रह जाता हूं मेरा अस्तित्व, तो बेसमय खाता हूं, आवश्यकता से विपरीत खाता हूं, स्वाद के लिए खाता हूं और जो है ना मात्रा से विपरीत खाता हूं, विरुद्ध भोजन भी खा लेता हूं रोगी करने वाला, ये सारा का सारा मुझे दुख में ले जाता है। संसार बेशक सुखमय है पर वो सांसारिक नियमों को पालन करते हुए सेवन किया जाए तो ये बहुत ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कराने वाला है ये संसार। तो इस तरह से समझना चाहिए महानुभाव कि हमें चार प्रकार के दुखों का अनुभव करें और उससे बचने के उपाय भी जीवन में धारण करें। इस संसार को मुख्य उपाय यही है कि हम संसार को साधन नहीं, साध्य नहीं, साधन बना करके चलें। यही है तेन त्यक्तेन का मूल मतितार्थ। ये त्याग पूर्वक भोग करो, कैसे त्याग पूर्वक भोग करो, त्याग पूर्वक का मतलब उसमें आसक्त मत हो। सुख ले लिया तो फिर अधिक भोगने की इच्छा हो जाएगी। मैंने अपने लिए नियम बनाया है और जिन जिन के घरों में मैं भोजन किया हूं उन सभी गृहस्थी लोग ये जानते हैं मेरे नियम को भली भांति कि यदि किसी ने कई सारे पदार्थ बनाकर ही सारे कई प्रकार के पदार्थ बनाकर के थाली में परोस दिए हों, 8-10 प्रकार के पदार्थ हों, तो उनमें जुबान को सबसे स्वादिष्ट लगने वाली चीज को, आइटम को सबसे कम मात्रा में खाना, ये मैंने अपने लिए नियम बनाया और इसका मैं कठोरता से पालन करता हूं तो स्वास्थ्य के मामले में मैं सुखी हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संसार का उपभोग हमें साध्य साधन बना करके उपयोग करना है, न कि साध्य बना करके। भोजन मेरे लिए है, मैं भोजन के लिए नहीं हूं। मकान मेरे लिए है, मैं मकान के लिए नहीं हूं। धन मेरे लिए है, धन के लिए मेरा अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही वस्त्र मेरे लिए है, ऐसे ही रिश्ते नाते मेरे हैं, इनके लिए मैं नहीं हूं। इनके लिए जब उपयोगित होता हूं, फैक्ट्री, दुकान, बिजनेस, धन और इस्टेट आदि के लिए जब मैं उपयोगित होने लगता हूं तो मैं दुखी होता हूं और ये चार प्रकार के दुख मुझे ग्रसित करेंगे ही करेंगे और मैं संसार के दुख सागर में गोते लगाऊंगा। जो इस तरह से विवेक को धारण करता है, संसार को साधन बनाता है, साध्य नहीं बनाता, वह व्यक्ति योगी होता है। आगे चलते हैं। छठा विषय है, छठी बात है, विषय भोगों में सुख न लेता हो और जिसका अपने मन इंद्रियों के ऊपर पूर्ण अधिकार हो। महानुभाव ये कैसे सिद्ध होगा? प्रारंभिक अवस्था में तो यह होता ही नहीं। एक तरफ उसके संसार है, दूसरी तरफ ब्रह्म जो उसने उसको देखा नहीं, जिसके विषय में उसने सुना नहीं, पढ़ा नहीं, वो तो सांसारिक सुख में ही आनंद लेगा। उसको तो खीर पूरी ही अच्छी लगेगी, मकान का सुख ही अच्छा लगेगा, दृश्य टीवी आदि में वो अपना समय लगाएगा, उपासना के प्रति उसकी रुचि होगी ही नहीं। परंतु नहीं, व्यक्ति इस तरह से इस बात को अपने जीवन में धारण कर सकता है कि ये आनंद तो है, इसमें खीर पूरी में आनंद है, अच्छे अच्छे दृश्य देखने में आनंद है, टीवी आदि पे अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखने में आनंद है, घूमने फिरने में आनंद है, सांसारिक उपभोगों का आनंद है, पर ये स्थूल आनंद है, मोटा मोटा आनंद है, सूक्ष्म आनंद कुछ और है। अभी पहले उसको शब्द प्रमाण रूप में आप्तों से ग्रहण करना पड़ेगा। ऋषि मुनियों ने बताया ये सांसारिक सुख कुछ भी नहीं है ईश्वर से सुख जो प्राप्त होता है उसके सामने, यानी तृष्णाओं को नष्ट करके उसके बाद जो सुख उत्पन्न होता है वो सुख कई गुना, हजारों गुना ज्यादा है, ऐसा ऋषियों ने बताया। तो हमको, हमारे सामने जब दो चीजें होती हैं पैरेलल, यानी एक हाथ में चने हैं, दूसरे हाथ में बढ़िया बादाम, पिस्ते, काजू, मुनक्के डाली हुई खीर है, स्वादिष्ट। अब हम चने चने को थोड़ी चुनेंगे, कोई नहीं चुनेगा, वो तो खीर ही चुनेगा क्योंकि दोनों में से कोई एक चीज मिलने वाली है, तो चयन उसका खीर की तरफ होगा। अभी हमने खीर का स्वाद कितना बढ़िया है, ब्रह्म आनंद कितना ईश्वर के सामने बढ़िया है, इस विषय पर चिंतन नहीं किया है, इस कारण से संसार रूपी सुख हमें ब्रह्म के सामने ज्यादा अच्छा लग रहा है। हमने कभी तुलना ही नहीं की, उहापोह ही नहीं किया। तो इस मामले में हम शब्द प्रमाण का सहारा ले सकते हैं। थोड़ा बहुत साधनाओं में प्रवेश करके जिस भी दिन हमारी सात्विक प्रवृत्ति हो जाएगी ना, और उस दिन हमको जो आनंद मिलेगा, जिस दिन भी हम ईश्वरीय नियमों का पालन करके, परोपकार आदि, सत्य का आचरण आदि, धर्म का आचरण आदि पालन करके, उस दिन हमारा जो मानसिक धरातल होगा स्वच्छ, निर्मल, आनंदमय, भीतर से संतुष्ट, स्थैर्य, संतुलन युक्त होगा, जिस दिन भी हमें थोड़ा सा भी अनुभव होगा, उस दिन हमारी श्रद्धा हो जाएगी कि हाँ, वास्तव में ब्रह्म का आनंद सांसारिक चीजों के लिए जाने वाले आनंद से कई गुना ज्यादा अच्छा है, स्थायी है और बढ़िया है। सांसारिक सुख तो क्षणिक है, ऊब हो जाती है, एक लिमिट के बाद नहीं सातत्य पूर्ण नहीं भोग सकते, और इसमें कई प्रकार का दुख भी मिला हुआ है। लेकिन यदि उसके नियमों को तोड़ा जाए सांसारिक सुखों के भोगने में, तो ये दुखदायी भी है संसार, लेकिन ईश्वर का सुख ऐसा नहीं है, हर बार बढ़िया है, सातत्यपूर्ण बढ़िया है, निरंतर भोगा जा सकता है और सांसारिक सुख के सामने कई गुना अच्छा है। महानुभाव जब ऐसी तुलना करके देखता है वह व्यक्ति योगी बन सकता है, ईश्वर की ओर उन्मुख हो सकता है। तो अगले विषयों पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, अभी के लिए इतना ही। इति ओम शम।